ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना क्रियान्वित हुए 7 साल हो गए पूरे। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और विस्तृत करने की प्रधानमंत्री ओली ने जताई प्रतिबद्धता। आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता देने का नवनियुक्त राजदूतों से परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा का आग्रह। आगामी रविवार को होने वाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन में उत्साह के साथ सहभागी होने की मतदाताओं से निर्वाचन आयोग की अपील। और जल्द ही रुक सकती है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और विस्तृत किया जाएगा। योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वित हुए 7 साल पूरे होने के अवसर पर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले 90 दिनों के बाद योगदानकर्ताओं के बच्चे भी कोष से लाभान्वित होंगे और 1 लाख रूपये से अधिक इलाज खर्च लगने वाले योगदानकर्ताओं को कुल खर्च का 50% कोष द्वारा मुहैया कराया जाएगा। मौके पर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने बताया कि विश्व के किसी भी देश में श्रम स्वीकृति लेकर रोजगार में गए हुए नेपालियों को सामाजिक सुरक्षा योजना में समेटने के लिए सरकार काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में ही नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री ओली ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना होने में जिफंट जैसे श्रमिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मौके पर जिफंट के अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ने कहा कि कोष मजदूर मैत्री नहीं है, इसे मजदूर मैत्री बनाया जाए। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता में रखकर इसका विस्तार और प्रवर्धन करने का नेपाल के नवनियुक्त राजदूतों और निर्यात व्यवसायियों से आग्रह किया है। नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त राजदूतों और नेपाल के निर्यात व्यवसायियों के साथ आज परराष्ट्र मंत्रालय में हुई अंतर्क्रिया में मंत्री डॉ राणा ने ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास और राष्ट्रीय समृद्धि की आकांक्षा को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने नीतिगत रूप में ही आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता में रखा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि चीनी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अंतर्गत सरकार कर्ज नहीं लेगी। उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगले हफ्ते होने वाले चीन दौरे के दरमियान सरकार ऋण नहीं लेगी, लेकिन अनुदान समझौता हो सकता है। आज काभरे प्लांचौक के धूलीखेल में आयोजित कार्यक्रम में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि बीआरआई लागू किया जाए या नहीं, इसको लेकर विभिन्न कोणों से विचार आ रहे हैं, लेकिन सरकार बीआरआई समझौता कर ही लेना चाहिए इस पक्ष में नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि एमओयू हो चुका है, इसलिए इसका क्रियान्वयन होना ठीक रहेगा। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि दुग्ध विकास संस्था डीडीसी को प्रभावकारी बनाकर कर्ज से मुक्त करने के लिए वे भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज मंत्रालय में राष्ट्रीय किसान संजाल का ज्ञापन पत्र लेते हुए मंत्री अधिकारी ने कहा कि डीडीसी के उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए वे विभिन्न प्रयास कर रहे हैं और इसका नतीजा जल्द ही दिखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि डीडीसी में पहले से ही बेढंगापन मौजूद है और अब वे इस बेढंगेपन को खत्म करने के लिए पहल कर रहे हैं। ज्ञापन पत्र के जरिए संजाल ने दूध गन्ना सुपारी लगाकर किसानों की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान आकृष्ट किया है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि बांके की बैजनाथ गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के नौवस्ता में स्थानीय बाशिंदों की समस्या समाधान करके औद्योगिक क्षेत्र के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बांके के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज मंत्रालय में हुए विचार विमर्श में मंत्री भंडारी ने कहा कि बस्ती पर असर न पड़ने के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र निर्माण में सहयोग देने का प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने इसी मार्गशीर्ष 16 गते रविवार को होने वाले स्थानीय तह के उपनिर्वाचन में मतदाताओं से उत्साह के साथ सहभागी होने की अपील की है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल ने दी। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव के साथ नेपाल के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राजदूत अब्दुल्ला अल शमसी ने शिष्टाचार भेंट की। आज उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौर में हुई भेंट में उनके बीच द्विपक्षीय संबंध, श्रम और आर्थिक संबंध लगायत विषयों में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी उपराष्ट्रपति के निजी सचिवालय ने दी। रेडियो नेपाल के ऑनलाइन पोर्टल www.radionepalonline.com के संपादक पद पर मुख्य संवाददाता प्रमोद कुमार सिंह दाहाल को नियुक्त किया गया है। रेडियो नेपाल की व्यवस्थापन बैठक के निर्णय अनुसार रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने दाहाल को ऑनलाइन पोर्टल के संपादक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई जल्दी ही रुक सकती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी के बाद आज 26 नवंबर को इसराइली कैबिनेट युद्ध विराम समझौते पर मतदान करेगी। इससे करीब दो हफ्ते से चल रही इस लड़ाई के रुकने की उम्मीद बंधी है। इसराइल ने लेबनान में करीब दो महीने से भीषण युद्ध छेड़ रखा है। इसराइल के लेबनान में किए गए हमलों में अब तक 3,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों की ओर से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने की उम्मीद है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता अमेरिका ने कराया है। अमेरिका की मध्यस्थता से हो रहे इस समझौते की शुरुआत दो महीने के युद्ध विराम से होगी। इस दौरान इसराइली सेना लेबनान से वापस आएगी और हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दक्षिण में अपनी सशस्त्र उपस्थिति समाप्त करेगा, जो इसराइल की सीमा से लगभग 18 मील की दूरी पर स्थित है। समझौते के तहत जब दोनों तरफ के सैनिकों की वापसी पूरी हो जाएगी तो हजारों लेबनानी पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल के साथ इस क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हिंसक हो गया है। इमरान समर्थकों के साथ झड़प में 6 सुरक्षाकर्मियों की जान गई और 100 से अधिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में सेना उतार दी है। इमरान समर्थकों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। इधर इमरान खान समर्थक इस्लामाबाद के मध्य तक पहुंच चुके हैं। जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान के समर्थक डी चौक पहुंच चुके हैं। डी चौक इस्लामाबाद का बेहद अहम इलाका है। इसी के आसपास राष्ट्रपति भवन, पीएम दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन स्थित हैं। इमरान खान की पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता है तब तक वो इस्लामाबाद में डटे रहेंगे। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक यहां इमरान खान खुद आकर अगली रणनीति का खुलासा नहीं करते हैं तब तक वे यहां से न हटें। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना क्रियान्वित हुए 7 साल हो गए पूरे। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और विस्तृत करने की प्रधानमंत्री ओली ने जताई प्रतिबद्धता। आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता देने का नवनियुक्त राजदूतों से परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा का आग्रह। आगामी रविवार को होने वाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन में उत्साह के साथ सहभागी होने की मतदाताओं से निर्वाचन आयोग की अपील। और जल्दी ही रुक सकती है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।